نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والمرح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد النبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا في حجري درهم يقسمها يثبراني ایک حدیث روایت کی ہے جس کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے اس حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لعن رجلا دو انسان ہیں کیا کر رہا ہے وہ آدمی فی حجر درہمیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے مال سے دولت دی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جب پاک کمائی سے انسان دولت کماتا ہے مالدار ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور اس نعمت کا بھی شکر ہونا چاہیے اور وہ جو بتایا حدیث کے اندر کہ وہ آدمی جو ہے کیونکہ جب پیسے آتے ہیں تو دو حالت انسان کی ہو جاتی ہیں پیسے پر چلو پاک کمائی سے اس نے پیسہ کما لیا بہت پیسہ ہے تجوریاں بھری ہوئی ہیں بینک بھرے ہوئے ہیں لیکن وہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے پیسے خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے کہ خرچ کرنا ایک اتنا بڑا موقع دیا اللہ پاک نے جنت کو کمانے کا اللہ کے قرب کا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے میں نہیں کسی کے پاس لیکن اللہ نے آپ کو دے دیے پیسے تو اب وہ چاہتا ہے کہ بس آتے رہیں میں خرچ نہ کروں بس گن گن کے اندر جمع کرتا رہتا ہے پیسوں کو کوئی بات کرتا ہے کہتا ہے بالکل میری پاک کمائی ہے حلال کمائی ہے یہ ہے فلاں ٹھیک ہے لیکن کتنا ضائع کر رہے آدمی اس کو اسے فائدہ نہیں اٹھا رہا کیونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھوڑا بھی جو ہے وہ تو بہت قیمتی چیز ہے یہ سب ذرائع ہیں اللہ کے قرب کے آخرت کی تیاری کے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو وہ اتنا قیمتی بن جاتی ہے چیز کھجور کی مثال دی ہے کوئی بالکل چھوٹی چیز اتنی قیمتی چیز بن جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ میں لے لیتا ہے یعنی کیا اتنی عجیب حدیث ہے دیکھا اتنی قیمتی بن جاتی ہے اس کھجور کو اللہ تعالیٰ کا دانے ہاتھ میں لے لیتے ہیں حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ اس کو ایسے بڑا کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بچھڑے کو بڑا کرتے ہیں جیسے آپ نے کوئی جانور رکھا ہے نا خوشی کے آپ کھلاتے ہیں اس کی مالش کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں چلاتے ہیں تو کس طرح اللہ کے نبی مثال فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اس طرح پالتا ہے اس کھجور کو جو آپ نے اللہ کے راستے میں دے دی اور پھر اللہ کے ہاتھ اور اللہ کا پالنا اب انعامات کی کیا قدر ہوگی اس شخص کی تو گویا کہ وہ اتنا بڑا ہو جاتے ہیں وہ کھجور کی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں وہ اس کے پہاڑ بڑے بڑے پہاڑوں جتنی کھجور بن جاتی ہے اتنا ثواب اس کو بن جاتا ہے کہ جسے کوئی انتہا نہیں کر سکتا تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بھائی اللہ جب پیسے دے رہا ہے تو خرچ کریں خرچ کے کتنے ذرائع ہیں कितने ज़्यादा अल्लाह पाक ने दिए हैं। देखें, किसी का आप सच्चे दिल से एक गिलास पानी भी पिलाएंगे, उस पर खर्च करेंगे, किसी को कुछ खाना दे देंगे, किसी को आप अपना तोहफा दे देंगे, क्या होगा, कई सवाब उसमें दर्ज हो जाते हैं अल्लाह के ताला के। और ये खर्च करने का मामला, खर्च हम समझते हैं निकाल रहे हैं, बैंक से पैसे निकालने तो कम होते हैं ना, ये वो नहीं होता। ये खर्च ऐसा है कि जैसे आप एक दरिया बह रहा है ना, उस दरिए से आप एक डोल पानी का निकाल दें तो पीछे से पानी आएगा, उसको बराबर कर देगा, पता नहीं चलेगा आपके आपके पैसे में कमी आई है, खर्च भी नहीं होगा। यहाँ तो ये है कि जितना निकालेंगे अल्लाह पाक उससे पता नहीं कितना बड़ा कर देगा। और अल्लाह के राह खर्चे में यह सबसे बड़ी चीज़ आप याद रख लें कि जितना खर्च करने से बलाएँ और मुसीबतें और परेशानियाँ और हाजात पूरी होती हैं, किसी चीज़ से इतनी पूरी नहीं होती। जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी है, लेकिन इसके लिए ये ज़रूर ख्याल रखें भाई, जो चीज़ आप पसंद करें वही खर्च करें, वही दें। ये नहीं कि भाई चलो किसी को आप खाना दे रहे हैं तो ऐसे चले खाना बच गया तो कल का खाना दे दिए, क्या फेंकना तो है ना, चलो बोल साथ वाले को देते हैं, तोहफा हो जाएगा, बासी खाना उसको खिला दिया। अल्लाह ताला इन चीज़ों को नागवार समझता है। आपने किसी को चीज़ देनी है तो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक, उसके रुतबे के मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक और फिर अपनी हैसियत के मुताबिक, क्योंकि दिल में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आप कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए दे रहे हैं, इंसान को आप नहीं दे रहे, आप उस इंसान पर एहसान नहीं करते। आपने उस इंसान पर एहसान जताया तो आपका सदका ज़ाया हो जाएगा। तो आपने कोई चीज़ उसको दी, देखा जी मैंने आपको चीज़ उसको दी थी, एक साहब ने पता नहीं गए थे लंदन तो उसने सुबह का नाश्ता करा दिया, ज़्यादा लतीफ़ा ही है भी तो नाश्ता वाश्ता करा दिया, बिना चलो सफ़र में थे जमात हमारी गई हुई थी जिक्र के लिए, तो वो साहब जो थे घर नहीं आए जिस बहुत उन्होंने मजबूर किया, मेरी आदत तो है ही नहीं बिल्कुल भी, आप देखते हैं दावतों में भी नहीं जाता मैं, तबीयत ऐसी है मेरी। मैं कहिए इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं और फिर हम सफ़र पर निकले हैं और अभी दावत तबलीग का मामला है तो बेचारा दिल रख रहे हैं उसकी, तो अब जब चला गया मैं उसके साथ एक दो साथी और ले गया, तो भाई तमाम कर दिया वो चाय पानी का जो कुछ करना था, बात ख़त्म हो गई। अब इतफाक़ से जहाँ भी उनसे मुलाकात होती है, यहाँ एक दफ़ा आए जमात के साथ, अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपने पहचाना ना कि जी, सोच हो जिस घर आपने नाश्ता किया था। अच्छा मैं कहा शायद वैसे ही याद कर रहे होंगे, चलो मैं अच्छा हाँ मुझे याद है, ठीक है ख़त्म हो गया। और फिर इतफाक़ से उनसे मुलाकात होगी, बिल्कुल बड़ भी बताऊँ आपको ये लतीफ़ा ही है, बड़े बेजान बैठ गए लतीफ़ा, तो कहीं बैठे थे फिर कुछ दिनों के बाद मुलाकात कोई 7-8-9 महीने गुजरे, आप जहन से आदमी निकल जाते, फिर अच्छे खासे लोग बैठे थे, वो सलाम साहब उन्हें पहचाना, भाई मैंने आपने पहचाना, वो आपको जो मैंने नाश्ता कराया था ना आपको मैंने। तो ये खर्च करना होता है बार बार उस चीज़ को याद कराना कि आपने ये किया, ठीक है हंसी तो आती है आदमी को, लेकिन ये कि वो अपना अल्लाह के लिए खर्च नहीं कर रहा। तो यहाँ कितनी प्यारी हदीस बताई जा रही है कि देखें शख्स है अल्लाह के नबी सुनाते हैं कि उसने क्या कर रहा है कि अल्लाह ने उसको माल दिया है, माल दिए फी हजन दरहम, वो छोले भर लेता है ऐसे। मैंने ऐसे लोग देखे, वो क्या बड़े अमीर लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो होते हैं, वडेरे छडेरे लोग होते हैं जिनकी अच्छी अच्छी माइंड होती हैं, मैंने देखा है दोस्तों थे हमारे, तो वो क्या करते थे बाकायदा ना नोटों को निकाल के रखते थे, वो कहते आज ये सारे नोट मैंने गरीबों में तकसीम करने, और कहते ऐसे नहीं करूँगा, उसमें खुशबू लगाते थे, याद जहरी नाम था, खुशी खुश लगा कहते जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी खुश है उसका, ये नोट में तकसीम करो लोगों के अंदर। तो ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आती थी उनको, और कितना अल्लाह ताला उसमें फजल होता था, अभी गरीबों को अल्लाह ने एक वसीला बनाया है, झोली भर रहे हैं फिर हजन द्रहम द्रहमों के साथ चांदी के साथ झोली भरी हुई है, यक समूह छुपा नहीं रहा, बल्कि क्या कर रहा है तकसीम कर रहे हैं, जिसके हाथ में रहते हैं उसको तकसीम कर रहा है, इतना तकसीम कर रहा है, इतना तकसीम कर रहा है। तो ये एक मिसाल दी है इसकी बड़ी खर्च करने पे। और जब पैसा आता ना, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि पैसे के बाद इंसान खर्च नहीं करता तो और लवाजमात में पड़ जाता है, बदमाशी में पड़ जाता है, शहवात को पूरी करता है, खल्त बातें करता है, और वो उसके लिए जहन्नुम बन जाती है पैसा। तो मुझे एक वाकया बड़ा याद आ रहा है इस पर खर्च करने पर। दो दोस्त थे और बहुत मोहब्बत थी आपस में, दोस्तों की तरह होती है। तो उसका जो एक दोस्त था उसका मामला ऐसा था कि वो आग के अंदर भी हाथ डालता था तो आग नहीं जलती, हाथ नहीं जलता था उसका, जिसम पे आग डाल दो नहीं जलता था, हाथ डालता था नहीं जलता था। तो उसने कहा एक दिन, यार ये मुझे राज बताओ, ये क्या है, ये जादू है, मुझे समझ नहीं आता, ये किस तरह तुम्हारे होता है कि तुम आग में हाथ डाल दे तो नहीं जलता है। कहता है ये राज छोड़ने पूछते हैं, कहते नहीं तो दोस्ती है तो बतानी पड़ेगा। बहुत इंसिस्ट किया उसने कि मुझे आप बताएं कि आपने जो हाथ आपका नहीं जलता, ये आग है और क्या वजह है इसकी। कहना फिर ये पूछता तो मैं तुम इसकी वजह बताता हूँ। जमाने का ज़माना था, कहते जान तक मैं कितना अमीर आदमी हूँ और सब कोठियाँ माल दौलत पैसा सब मेरा ही है। यंग आदमी था तो एक दफ़ा मैं अपने चवारे पे चढ़ा और सैर कर रहा था तो सामने देखा एक गरीब सा मकान था, वो तो वहाँ देखा एक लड़की है वो चवारे पे आई, तो इतनी खूबसूरत मुझे लगी कि बस वो शैतान आ गया, तो मैंने उसको पसंद किया अपनी शहवत के लिए। दिल में बैठ गई मेरी लड़की, तो मैंने किसी तरह किसी तरीके से बड़े ऑफर की उसको पेश की चीज़ें, लेकिन वो शरीफ नफ्स गरीब थी लेकिन इज्जतदार औरत थी, उसने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया मेरी इन बातों का। बहरहाल वो दिल में तो मेरी बैठी थी, बात ख़त्म हो गई, वक्त गुजर गया, गरीब थी, शादी भी हो गई उसकी, गरीब जगह पे शादी हो गई, दो तीन बच्चे हो गए उसके, खाविन मर गया, मुफलसी और तारी हो गई बेचारे पर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चे फाकू में चले गए, कहत पड़ा था एक बहुत बड़ा हमारा, और बिलकने लगे, बस मौत के दर पे थे, तो बेचारी बाहर निकली, उसने कहा भाई ये अमीर लोग हैं हमारे शहर के, तो मैं इससे जाके भीख मांगती हूँ तो मुझे कुछ दे दे। तो वो औरत जो थी कहते मेरे पास आई, मैं एकदम मेरा वही जज्बात फिर उभर आया उस पर, ये तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, अल्लाह ने इसीलिए भेज दिया मेरे पास। तो मैं क्यों आई कहते भाई, तो बड़ा आदमी है और मेरे बच्चों की बहुत बुरी हालत है, मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, बच्चा जो है मरने वाला है, तो मुझे कुछ खैरात दे दे, कुछ सदका दे दे। कहता बहुत कुछ दूंगा, एक शर्त है, तू तो शायद भूल गई लेकिन तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अब चाहे चौंक गई औरत, तो एकदम भाग गई बाहर। अब जब घर गई तो फिर बच्चा तो बिलख रहा था, बुरा हाल था उनका। फिर आई बेचारी, कहने लगी कि देख अल्लाह जालिम ऐसी बात ना कर, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, क्यों जुल्म करता है, तीन बच्चे हैं जो मर रहे हैं इस वक्त, रहम कर। तो बाजिद रहा, कहता नहीं, कहता मैं वो औरत जो थी मानता थी बेचारी, क्या करती हो। तो उसके जहन में आया कि चलो भाई क्या करूँ, मजबूरी है तो मैं हाँ कर लेती हूँ। तो शरीफ औरत थी कहती, जैसी उसने जहन में आया तो एकदम उसके जहन के अंदर एक आयत अल्लाह ताला के कुरान के अंदर उस औरत के जहन में आ गई, हमेशा तकल्ला हो जल्ला मखरज यासिम, अल्लाह का डर, अल्लाह से खौफ करो तो अल्लाह ऐसी जगह से रिज्क देते हैं जहाँ इंसान का वहम गुमान भी नहीं होता। कहता एकदम मैं अमीरी आँख खुल गई औरत कहती है, मैंने उसको बहुत उसने मुझे डांटा, कहता सालिम दरिंदे देख अल्लाह ने मुझे खौफ दिया, अब बेशक मेरे बच्चे मर जाएं टुकड़े टुकड़े हो जाएं, बहुत गलती मैंने की कि मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे अपने मालिक के पास जाना चाहिए था। कह के उसने कहा ना कि मुझे अपने मालिक के हकीकी के पास जाना चाहिए था, तो उसने कहा मेरा जो अंदर से था ना वह हिल गया उसके लफ्ज़ों से, क्योंकि वो तो अल्लाह की तरफ पहुँच चुकी थी औरत। सीधी गई औरत, उसने जाके बच्चों को देखा तो बस बेचारे ख़त्म होने वाले थे, फाके तबाह। उसने फौर मुसल्ला निकाला, वजू किया और हाथ उठा दिया अल्लाह के दरवाजे में, अल्लाह ताला गलती मुझसे हुई कि तेरे दरवाजे को छोड़कर मैं किसी इंसान की तरफ चली गई, तो मेरे करीब है, ये सब कुछ तेरे ही है ना, तो तू अगर मदद कर दो बात, इस्तग़फ़ार माफ़ी करती हूँ या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा, और तूने वादा किया है कुरान के जो मुझसे डरता है मैं उसके दरवाजे खोल देता हूँ। अभी उसने हाथ नीचे नहीं किए थे, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। तो उसने कहा कौन है आप, कहता तेरा भाई आया हूँ। मेरा भाई तो कोई भी नहीं है, कहता नहीं मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। तो उसने जो दरवाजा खोला तो आदमी वो था, उसने कहा तो फिर तू मेरे दरवाजे पे आ गया। उसने कहा यकीन कर तू मेरी बहन है, मैं तेरे सर को ढांपना चाहता हूँ, जितनी माल है मैं तुझे देना चाहता हूँ। मैं तेरा बिल्कुल भाई हूँ। और रोने लगा, कहने लगा कि मैं तुझसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन जैसे ही तू गई तो मैं दिल धड़स गया था कि एक औरत मोहताज होकर अपने रब की तरफ भाग रही है और अल्लाह ने मुझे इतना पैसा दिया और मैं इसके साथ ये सलूक कर रहा हूँ। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बना दी और तेरा तू वसीला है, जो चाहे तू जितना चाहे ले ले इससे। तो औरत मुसर्रे पे बैठी थी, उसने कहा तू मेरा भाई बन गया, उसको मैं तू मेरा बहन है, मैं तेरा भाई हूँ। तो उसने कहा हाथ उठाया आसमान की तरफ, कहते या अल्लाह इसको दुनिया और आखिर तमाम आग से महफूज फरमा दे। कहते जब इसकी दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ सुन ली, उस दुआ से मेरा जिस्म मेरा हाथ कभी आग से जलते ही नहीं दुनिया के अंदर। एक खर्च उसने किया पैसा, आज़ाद कर दिया उसको अल्लाह ने जहन्नुम से देख लिया। तो ये एक चीज़ है कि भाई अल्लाह के रास्ते में जब आ जाए, इसमें ये देखें ना सोचें कि भाई हम अमीर होंगे तभी खर्च करें, हैसियत के मुताबिक एक दस पेंस 15 पेंस कुछ चीज़ नहीं रखती, डब्बा बना लें रोज़ एक सदका डाल दें कि वो आप तसव्वुर भी कर सकेंगे वो रकम इतनी हो जाएगी कि आप हैरान होंगे मैं तकसीम कहाँ करूँ, नसीब था आप कितने पैसे बन जाएंगे वो कि आपको पता नहीं है इन पैसों को तकसीम कहाँ पर करूँ। रोज़ 10 पेंस डाल दें आप, मतलब अगर आदमी दिन में 10 पाउंड कमाता है 10 पाउंड के अंदर 1 पाउंड डाल दें, क्या फर्क पड़ता है, 1 पाउंड कुछ भी नहीं है। 9 पाउंड आपके, 1 पाउंड किसका है, अल्लाह का है बस। सभी चलो रोज़ डालने भूल जाते हैं आदमी, और जब सब तनख्वाही शनख्वाह मिले या हिसाब किताब कर रहे हो टाक उसमें डाल दें बस। और जब कोई ऐसा मौका है निकालें मुट्ठी भर के बगैर गिने उसको दे दें कि ले जा भाई ये तेरा माल, पाकिस्तान को जा रहे उसको दे दें, सऊदी अरब जा रहे उसको दे दें, यहाँ पे लोग आ रहे हैं कोई गरीब उसको दे दें, बस हाथ को खुला रखें। ये ना कि अमीर होने का इंतज़ार ना करें, आप बहुत अमीर हैं अगर आपने इतने पैसे दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के अंदर। तो बहरहाल ये खर्च की बात है और ये बहुत बड़ा फेल अमल जो था नबी अगर उसमें पेश किया सहाबा के सामने, लव अन रजल पेश किया कि दो आदमी हैं, एक आदमी इतना बड़ा अमल कर रहे हो जिससे कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच जाता है कि वो अपने फी हजर दरहम युकसिम तकसीम कर रहा है, कितने बड़े अमल किए अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, गौर करें आप। और फिर कहा वाह रहा, दो आदमी बताए थे ना रजल, वाह रहा सुना आपने साहबी कहते हैं वाह रहा, और दूसरा आदमी जो है वो तो इतना बड़ा फेल कर रहा है इसका कोई मुकाबला नहीं समझ आता, वहाँ वाह रहा, दूसरा आदमी क्या कर रहा है यस्कुरुल्लाह, वो पैसा नहीं खर्च कर सकता बेचारा पैसा ही नहीं, तो वो क्या कर रहा है वो यस्कुरुल्लाह, वो अल्लाह को बैठ के याद कर रहा है। देखिए इतने बड़े फेक बात दूसरा फेक बताया कि वो क्या कर रहा है भाई यस्कुरुल्लाह, वो बैठा अल्लाह को याद कर रहा है, वो खर्च कर रहा है माल पे माल खर्च किए जा रहे हैं, कितना मुकाम उसका बुलंद हो गया होगा, कितना मुकाम बुलंद हो गया होगा। वो दूसरा क्या कर रहा है, यानी एक मिसाल दी है कि हाथ ही जलना बंद हो गया खर्च करने पर, जहन्नुम की आग दुनिया में ख़त्म कर दी इसकी, तो उधर ही वो क्या कर रहा है और यस करो अल्लाह। और दो आदमियों का मुकाबला किया नबी के सस्म ने सुबहान अल्लाह, ये दो आदमी हैं। फिर उनसे सवालिए तरीके से पूछा जैसे अब बताओ, वो तो बेचारा जिक्र में लगा हुआ है, जो ही कहते हैं बस जिक्र ही करते रहते हैं कोई फ़ायदे भी है यार, वो देखो कहने के बस जिक्र में बैठे रहते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं उस वक्त इनको छोटा ना समझना, और यस्करुल्लाह वो जिक्र कर रहा है खाना, कौन बड़ा है इसमें, अल्लाह किससे प्यार कर रहा है दोनों में से, अल्लाह किसको पसंद फरमा रहे हैं बताएं, फरमाते हैं खाना हस्करुल्लाह अफ़ज़ला, जो अल्लाह का जिक्र कर रहा है अल्लाह उससे प्यार कर रहे हैं, अफजल ये इंसान है जो अल्लाह को याद कर रहा है। इतना बड़ा फेल है अल्लाह का जिक्र, आप ये बताएं इतने बड़े अमल को अल्लाह ताला ने मिसाल पे रखा है किसको छोटा ना समझना, एक ज़माना आएगा ऐसा कि लोग अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाएंगे बहुत। हज़रत शेख ज़िक्रिया रहमतुल्लाह फरमाते थे अपने आखिरी दिनों के अंदर आखिरी मर्ज़ में फरमाते थे, चरपाई पे लेटे हुए उनके जो साथी वो बताते हैं अफ्रीका के अंदर उन्होंने फरमाया था कि देखो ज़माना एक कैसा आ गया कि अब लोग जो है अल्लाह के जिक्र से बहुत दूर हैं, इसकी मेहनत करनी है तुम लोगों को, अल्लाह के जिक्र की तरफ चलना है, जिक्र को जिंदा करना है, जिक्र इतना जिक्र गालिब हो गया था आखिरी दिनों में हजरत शेख पर, आप पूछे उनके साथियों से इतना गालिब हो गया था कि जिक्र के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। आज भी वो जिक्र जो है बहुत सी जगह दुरूद शरीफ की महफिल कहा जाता है उसको, मजलिस मदीने में है मक्के में है मैं जानता हूँ उसका शेख कराची में है, तो इंडिया तो मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, गया जाना नहीं हुआ, इंशाल्लाह चलेंगे कभी साथी, तो है तो मेरा यहाँ ताल्लुक इंडिया से ही है। तो ये इतना जिक्र फैल गया हर शेख से मस्जिद रूशी के हर जगह ही हल्के हो रहे हैं अल्लाह के जिक्र के, उनकी मजलिस करती है। तो अल्लाह वालों को ये बशारतें हो जाती हैं इस चीज़ की, भाई जिक्र ये आजमाना ऐसा है, कितनी बड़ी मिसाल दी है, किसको छोटा ना समझा दें कि वो जो इतना खर्च कर रहा है लेकिन फिर भी जिक्र करने वाला फिर भी अफजल है उससे। तो उसके खर्च करने से मैंने आपको मिसाल दी है कि दोजख की आग से बरी हो गया, तो जिक्र करने वाले की क्या मिसाल होगी, वो कहाँ कहाँ भरी हो जाएगी और क्या क्या इनाम उसको अल्लाह पाक इनायत फरमाते होंगे। तो जिस वक्त जिक्र करने बैठा करें बहुत आजी और तवाजी से एक दफ़ा अल्लाह की तरफ झुक के सोच लिया करें, अल्लाह ताला कितना बड़ा अमल तो हमें करने की तौफीक दे रहा है जिसका हमें अभी एहसास नहीं किया कितनी कीमती चीज़ है। क्योंकि ये ज़माना, ये दुनिया, हर अच्छी चीज़ पर आदमी को ना क्या करते हैं, वो कम्प्लेक्स पैदा करते हैं, इन्फ्रेटिक कम्प्लेक्स पैदा करते हैं, ये यार क्या करो, ये करो, क्या काम कर रहे हो, इससे क्या होता है, ये क्या तुम बन गए हो। हमेशा इस ज़माने में दस्तूर रहा है कि जब भी कोई अच्छे काम पर इंसान लगता है ना, जो बुलंद काम होता है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं, इसके हटाओ, इसी रास्ते से हटाओ, इसको निकालो। आप ये देख रहे हैं आजकल कितनी मुखालफत होती है इसकी, यानी बगैर किसी वजह के, कुछ वजह ही नहीं है, ऐलान करते करते मुखालफत कर दें, यानी ताज्जुब है। अब ये कुरान हदीस तो बिल्कुल मुस्तंद चीज़ है ना, वो यही तो इशारा कह रहे हैं कि वही क़यामत की निशानी में होगा, पसंद नहीं होगा कि जमात बैठ कर अल्लाह का जिक्र करे, उनको गवारा ही नहीं होगा, तमाशे करवा लें जितना भी करवा लें, जितनी चीज़ें करवा लें सब कबूल हो जाएंगी उनको, दो दो घंटे तीन तीन घंटे करा लें आप मस्जिदों के अंदर। हाँ आजकल यही मामला है, आप देखें रमज़ान का पता ना किसी चीज़ का पता, बस ये जितना आप करा लें रौनक है, क्योंकि जहाँ जिक्र की बात आएगी बस वहीं लोगों के मुँह फूल जाएंगे। देखें शुक्र नहीं, ये कहाँ कलमा बिद्दत है, ये इस तरह बैठ गए हैं ये बिद्दत है, आपने यूं हो गए सब कुछ इसमें अल्लाह के जिक्र में, और जबकि इतना क्लियर किया है हदीसों में कुरान में अल्लाह ताला ने इतना क्लियर किया है। देखें क्याम वक़्त जिक्र के लिए फरमाया अल्लाह ताला ने, लेटे कर, बैठ कर, उठते कर, चलते कर, जिस हाल में तुम जिक्र करोगे। और फिर बुजुर्गों ने इस पर तो लिखा है, स्थानीय ग्रंथ फरमाते हैं कि हर हाल के अंदर जिक्र जो है वो करना तो छोड़ो, मकबूल है अल्लाह अल्लाह के नज़दीक, हर हाल में मकबूल है। वो कहते हैं इसको छोड़, ये हो ही नहीं सकता कि जिस हाल में या अल्लाह को जिक्र कर रहे हैं, जिस पोजिशन में कर रहे हैं, वजू हो ना हो, तभी चाहे ना चाहे, हम मेरे हजरत फरमाते थे, दिल मान रहा हो या ना मान रहा हो, मज़ा आ रहा हो या ना आ रहा हो, अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो वो मकबूल है, सवाब तो छोड़ दें, वो कबूल है, एक्सेप्टेड। अल्लाह कहता है मैंने कबूल कर लिया था जिक्र को भी। कोई आज तक कोई इबादत है जो रिया से कबूल हुई, मुझे बताएं, अल्लाह कहता है रिया से भी कर तो मुझे कबूल है। तो ये ज़माना है, कभी आप छोटा दिल ना करें, क्योंकि मेरे हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया था कि पता ही ये उनको तो कश होते थे अल्लाह वालों को, मुझे सब चीज़ नसीब, आज 50 साल पहले उन्होंने कहा था कि एक बात का ख्याल रखना कि तुमने गली गली जाके, दरवाजे पर जाके, लोगों के पास जाके, तुमने उनके अंदर जिक्र को जगाना है, बहुत सुस्ती जिक्र जगाना है, इस पर मेहनत करनी, लोगों को जिक्र बताना है तुमने, बस दूसरा काम तुम्हारा नहीं है, मुझे कहा था। तो ये चीज़ है, क्या यहाँ जिक्र हम करने से भागते हैं, हालांकि सवाब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और मज़ा भी है जिक्र में, अल्लाह के नेमतें भी हैं, फिर भी लोग मुखालफत मुखालफत मुखालफत। लेकिन ये मुखालफत से तो इंसान बुलंद होता है, घबराना नहीं चाहिए, हम आँख बंद करके अपने जिक्र की मजारिस में, जहाँ जिस मस्जिद जो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमें कह दे आपके जिक्र कराएं, आँख बंद करके वहाँ पहुँच जाएँ, समझ जाएँ उस जिक्र पे भी रहमत, मस्जिद पे भी रहमत हो रही है, वहाँ के लोगों पे भी रहमत हो रही है, उस बस्ती पे रहमत हो रही है। ये मामूली चीज़ नहीं, तो अल्लाह का जिक्र है। बहुत सी दफ़ा मैं थक जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, तो ख्याल आता है कि चले आज उस मस्जिद में ना जाएँ, लेकिन आज बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, तो रोका भी, भैया चक्कर आ रहे हैं आपको, कैसे जाएँगे, तबीयत बहुत ख़राब है। मैं कह ये तो बहुत नामुमकिन बात है, फिर शेख ने एक ड्यूटी मुझे लगाई तो मैं क्यों ना जाऊँ, क्या है, बेहोशी होंगे तो हो जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन अल्लाह का जिक्र जो है वो तो करना ही, हमने पहुँचना है। तो ऐसे हम मुझ जैसा मजबूर आदमी, फिर गुनाहगार आदमी, आप तो माशाल्लाह बहुत मुस्तैद और दीनदार और नेक आदमी हैं, आप हिम्मत करें जिक्र के, कभी जब पता चले वहाँ जिक्र हो रहा है, मुझसे पहले पहुँचा करें अल्लाह का नाम लेकर, और खुशी खुशी जाया करें कि अल्लाह ने देखें हमें कितनी तौफीक दे रहा है कि हम अल्लाह के जिक्र में जा रहे हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मरते दम तक हमें जाकिर शाकिर रखे, एक ही वसीला है, कितनी बड़ी हदीस है, کہ سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا عمل ذکر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. جہاں ہم نے جانا ہے, جس منزل پہ ہم نے پہنچنا ہے, مجھے بتائیں. اب ہم بوڑھے ہو جائیں جی, ذکر چھوڑ دو, یہ تو وقت آیا. اب بیمار ہو ذکر چھوڑ دو, ابھی تو وقت آیا. اس بیماری کے بعد ہو سکتا ہے میں قبر میں جاؤں. ادھر تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی عمل اس سے بڑا نہیں جو تجھے عذاب قبر سے بچا سکے. حدیث ہے, نہیں کرنا ہم نے ذکر, ایسے نہیں. ذکر سیکھیں, ذکر والوں کے پاس بیٹھیں, اپنے دل کے اندر ذکر کو اتاریں, اور صبح شام تھوڑا ٹائم دیں, اس میں بیٹھیں باقاعدگی کے ساتھ لگ ذکر کریں. بالکل نہ سوچیں کہ یار اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, اس کا یہ نہیں ہو رہا, پتہ نہیں قبول نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ بس تجھے میں نے بٹھا دیا, تو کرتا رہے, قبول میں نے کرنا ہے. اس کو فکر تو اس چیز کا نہ کر, تو اپنے آنکھ بند ہو تب بھی کرتا رہے, دل مان لینا تب بھی کرتا رہے, وضو نہ ہو تب بھی کرتا رہے, بس ہاتھ میں تیرے اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے اور ذکر میں مشغول ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.